शांति। तो आज हम देखेंगे, परसों की मुरली में बाबा ने कहा था कि सबसे गंदी बीमारी है कौन सी, बाइस्कोप, सिनेमा, सिने की मां। बाबा ने कहा था कि तुम ब्राह्मण बच्चे हो मुख वंशावली, वो ब्राह्मण है कुख वंशावली, वो हथियाला बांधते हैं काम चिता पर बिठाने के लिए, और तुम ब्राह्मणिया हथियाला बांधती हो काम चिता से उतार कर ज्ञान चिता पर बिठाने के लिए। तो ये पुरुषार्थ है, काम चिता से उठाकर ज्ञान चिता पर बिठाना, ये ब्राह्मणियों का काम है। तो बाबा ने कहा सबसे गंदी बीमारी है बाइस्कोप। बाइस्कोप अर्थात सिनेमा, प्रकोप, वीडियो। तो ये तो उस समय की टाइम है जब साकार में बाबा मना करते थे कि बाइस्कोप नहीं जाना, देखना नहीं है। अगर जाते हो तो कोई मजबूत हो, शक्तिशाली स्थिति वाला हो जो जाकर वहां सर्विस करे। तो परसों के मुरली में था, तुम हो मुख वंशावली, वह है कुख वंशावली। वह ब्राह्मण लोग हथियाला बांधते हैं काम चिता पर बिठाने का। अभी तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मणियां काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने का हथियाला बांधते हो, तो वह छोड़ना पड़े। यहां के बच्चे तो लड़ते झगड़ते पैसा भी बर्बाद करते हैं। आजकल की दुनिया में बहुत गंध है, सबसे गंदी बीमारी है बाइस्कोप। अच्छे अच्छे बच्चे भी बाइस्कोप में जाने से खराब हो पड़ते हैं, इसलिए बीके को बाइस्कोप में जाना मना है। ये श्रीमत है भगवान के आदेश, फरमान कहो, आदेश कहो, आज्ञा कहो। हाँ, जो मजबूत हैं उनको बाबा कहते हैं वहां भी तुम सर्विस करो, उनको समझाओ। ये तो है हद का बाइस्कोप, एक है बेहद का बाइस्कोप भी है। बेहद के बाइस्कोप से ही फिर ये हद के झूठे बाइस्कोप निकले हैं। तो ये पाश्चात्य संस्कृति का सारा प्रभाव है जो हमारी भारतीय संस्कृति को धूमिल कर रहा है, जो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की संस्कृति थी, जिसके बलबूते पर संसार में भारत विश्व गुरु कहलाता था। बाबा ने भी अपने पिछले जीवन काल में पिक्चर देखी थी सौभाग्य सुंदरी, बाबा अपना अनुभव बताते हैं, और वो भी थी उसमें ब्लैक एंड व्हाइट होगी, और मूवी थी वो टाकी शायद ना होगी। तो उस समय के अनुभव के आधार पर बाबा कितना सतर्क करते हैं, क्योंकि बाइस्कोप अर्थात जो चीज हम देखते हैं और देखी हुई चीज बहुत कम भूलती है। जैसे अभी अभी जो सीन देखा ये कभी भूलेगा नहीं अभी कमलेश भाई को, और उसका पूरा प्रभाव रहता है, एकदम अटेंशन रहता है। उधर भी अकेले नहीं जाएगा कभी, अगर जाएगा तो सीधा ही वही चीता नजर आएगा, ध्यान रहेगा, पूरा अटेंशन रहेगा। इसी तरह से बायोस्कोप भी एक ऐसी चीज है जो हमारी बहुत सारी एनर्जी को वेस्ट कर देती है। उस समय तो बाबा कहते थे कि शक्तिशाली स्थिति जाओ तो सर्विस करो, तो सर्विस करने का भी स्कोप था उस समय। लेकिन अभी अगर हम सोचे कि बायोस्कोप में जाएं और फिल्म देखें जाकर और हम सेवा करें, वो अभी समय नहीं है, क्योंकि अभी बायोस्कोप वहां जाने की जरूरत नहीं है। अभी बायोस्कोप तो कहां है, हमारी जेब में घुस गया हुआ है वो। जितना जितना ब्राह्मण बायोस्कोप से दूर हुए, बायोस्कोप खुद चलकर हमारे पास आ गया, वो हमारे ईष्ट देव बनकर आया जैसे। तो किस किस तरीके से हमारे जीवन में माया प्रवेश करती है,
माया देवी बनकर आए
हैं। हाँ, रावण का ईष्ट देवी कहेंगे। तो कैसे कैसे तरीके से, नए नए तरीके से प्रवेश करता है वो हमारे ब्राह्मण जीवन में, और हमारी क्या दुर्दशा कर देता है, उससे हमको क्या क्या हानियां होती हैं, उससे निकलना कैसे है। क्योंकि वर्तमान समय ये जो बीमारी है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और इस बीमारी की बदौलत कहीं ना कहीं हम अपने कर्तव्यों के प्रति बेमुख हो जाते हैं। भले सारा दिन बेमुख नहीं होते, लेकिन थोड़ा भी टाइम, कहते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, अगर थोड़ा भी हम अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता नहीं रहती है, विस्मृत हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं माया हमको अतीत की स्मृतियों में ले जाती है, और वो अतीत की जो स्मृतियां हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हमको जिन आंखों से हमने देखा हुआ है, जो भी दृश्य हैं वो स्वतः ही आते हैं, उनको सामने लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो बायोस्कोप से हमको दूर जाना है, तो बायोस्कोप को देखने से क्या क्या हमारी शक्तियां क्षीण होती है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमारा समय वेस्ट होता है, कितना समय चला जाता है। एक है छोटे छोटे क्लिप आते हैं आजकल, कुछ क्लिप काम के भी होते हैं व्हाट्सएप पर, कोई 10 सेकंड का, कोई 20 सेकंड का, कोई 1 मिनट का, जो बीके आपस में लेन देन भी करते हैं। लेकिन बीके में भी लेन देन में कहीं ना कहीं थोड़े फिल्मी वाले भी कहीं ना कहीं फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन एक है प्रेरणादायी, लेकिन एक है जो आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा, कहीं कभी कोई लिंक भेजता है, तो उसमें हमारा सारा टाइम बर्बाद चला जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। और टाइम बहुत अमूल्य खजाना है, हमारे हाथ से आया हुआ हीरा हम उसको पत्थर समझ के फेंक देते हैं और बाद में कितना पछतावा होता है। तो समय हमारा बहुत सारा वेस्ट चला जाता है अगर हम बायोस्कोप की तरफ अपना जो मन है वो तो खींचता रहता है। मान लीजिए अगर आधा घंटा सीरियल देखने की किसने आदत बना ली, तो केवल उसने आधा घंटा जाया नहीं किया, आज आधा घंटा देख लिया, तो कल जो मान लीजिए शाम को, रात को 8 बजे आने वाला है, तो 8 से अगले दिन 8 बजे तक उसके बारे में उसका चिंतन चलता रहेगा, अभी आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, क्यूरियोसिटी बनी रहेगी, तो सारा दिन चिंतन चलता रहेगा, और भी सोचेगा भी क्या उसके बारे में, इस एक्टर को ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, आगे ये सीन होगा देखना, तो कितना हमारा टाइम वेस्ट चला जाता है। तो सबसे पहला खजाना जो हमारा समय है, अमूल्य संपत्ति है, बाबा कहते हैं संगम का एक एक सेकंड कई वर्षों के समान है, तो हमारा टाइम कितना वेस्ट चला जाता है उसमें, हम स्वयं ही अपने खजाने को नष्ट कर देते हैं। और दूसरा, उसके प्रति भी हमारे संकल्प कितने चलते हैं, जो संकल्पों की एनर्जी है, शक्ति है, संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसके आधार पर हम अपने जीवन में पुरुषार्थ करते हैं। जो हमने बाबा के अच्छे अच्छे संकल्पों को बुद्धि में जमा करके रखा है, जिन संकल्पों से मनसा सेवा सहज होती है, जैसे बाबा ने संडे की मुरली में कहा था, शुद्ध संकल्पों का खाता जमा करो और बांटो उनको। तो जो हमने जमा करके पूंजी रखी है, अगर हम बायोस्कोप की तरफ झुकाव हमारा होता है, तो बायोस्कोप का जो प्रकोप है वो हमारे संकल्पों के खजाने को भी नष्ट कर देता है। तो संकल्प भी कितनी बड़ी एनर्जी है जो बायोस्कोप क्या करता है, किया की कमाई सारी चट। और फिर संकल्प हमारे उत्पत्ति कौन से संकल्पों की होती है, देवान के संकल्पों की, देह अभिमान के संकल्पों की उत्पत्ति होती है। फिर हमारा दृष्टिकोण भी चेंज हो जाता है, हमारी दृष्टि में कितनी जो एनर्जी हमने बाबा से दृष्टि लेके भरी थी, अनेक भाई बहनों की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी थी, या अनेक भाई बहनों का हमारे प्रति जो दृष्टिकोण एक बहुत ऊंचा बना था, तो स्वयं हमारे अंदर एक हीन भावना का प्रवेश हो जाता है, आत्मघात कर देते हैं स्वयं कई, जो भी हमने जमा किया था दृष्टि के माध्यम से, तो हमारी दृष्टि भी फिर चाहे हम ब्राह्मणों को देख रहे हैं, चाहे बाहर वालों को देख रहे हैं, किसी को भी देख रहे हैं, तो हमारा दृष्टिकोण भी चेंज होता है। हम फिर आत्मिक दृष्टि की बजाय दैहिक दृष्टिकोण हमारा बन जाता है। तो एक बायोस्कोप का यह भी प्रकोप पड़ता है कि हमारी दृष्टि भी उसमें चेंज हो जाती है। इसलिए बाबा ने दृष्टि क्या कहा, बायोस्कोप में ब्राह्मणों को जाना ही नहीं है, बायोस्कोप में तो जाना नहीं, लेकिन बायोस्कोप ही आ गया खुद चल के, अब हमको इतना सतर्क वगैरह रहने की जरूरत है, समय कौन सा चल रहा है। बाबा ने कहा बताना है कि संगम का एक एक सेकंड कितना बहुमूल्य है, तो अगर हम इसको नजरअंदाज करके अपनी दृष्टि को, अपने समय को, संकल्प की एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, फिर उसी के आधार पर हमारी वृत्ति बनती है, हमारी वृत्ति में क्या क्या हो रहा है, वृत्ति में कितनी कितनी हलचल हो रही है। वो हलचल क्या करती है, एक तो स्वयं की स्थिति गड़बड़, स्वयं से संतुष्टता नहीं रहेगी, उदासी रहेगी, अपने प्रति हीन भावना बनी रहेगी, अंदर में मन खाता रहेगा कि जो बाबा कहते हैं वो तो हम करते नहीं है, और असंतुष्टता के भाव पैदा होते रहेंगे, और सबसे बड़ी बात हम अपने आसपास के वायुमंडल को भी खराब करते रहेंगे, जो कि बहुत एक भारी बोझ बन जाता है। कई दफा आपने भी अनुभव किया होगा, जब हम संगठित रूप से योग में बैठते हैं तो कुछ एक आत्माएं ऐसी भी होती हैं, अगर वो हमारे आसपास बैठी हैं और इन चीजों में वो इन्वॉल्व होती हैं, तो हमारे अगर हमारी स्थिति शक्तिशाली है तो हमें प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन उनकी स्थिति अगर शक्तिशाली है, हमारी अगर कमजोर है, तो हमारा योग भी नहीं लगने देती है, इसलिए आप चाहते हुए भी योग नहीं लगा पाते हैं, मन बोझिल हो जाता है, भले हम उस निर्विघ्न स्थिति थी, लेकिन हमने अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाया, इसलिए नकारात्मक जो ऊर्जा है वो हमारे मन को भी प्रभावित कर देती है। और कई दफा हमारी स्थिति बहुत शक्तिशाली है और हमने सारे दिन में पूरी सावधानी रखी है, कोई इस तरह का कोई दृश्य नहीं देखा है, कोई छोटा मोटा वीडियो नहीं देखा है, सारे दिन में हमने मुरली पढ़ी है, शुद्ध संकल्पों का खाता जमा किया है, मनसा सेवा की है, ड्रिल की है, ज्ञान की चर्चा की है आपस में, कुछ मनन चिंतन किया है, कुछ पढ़ाई लिखाई की है, मुरली के अच्छे अच्छे शब्दों को बार बार मन बुद्धि में दोहराया है, बार बार रिवाइज किया है, रिकॉल किया है, तो सारा दिन ये करने के बाद फिर देखा होगा योग लगाना नहीं पड़ता है, फिर आसपास में क्या हो रहा है वो भी देखना नहीं पड़ता है, स्वतः लग जाता है। और जब इन चीजों से हम सारा दिन मुक्त रहते हैं तो फिर उस दिन शाम को भी प्रभावित हो जाते हैं, फिर मन बोझिल हो जाता है, गर्दन स्वतः झुकने लगती है, पता नहीं चलता कि हम सो रहे हैं लेकिन गर्दन झुकती है, या तो भले आंखें खुली हैं लेकिन मन कहीं ना कहीं और ही घूमता रहता है। तो कितना कदम कदम पर हमको सावधानी रखने की जरूरत है, इसलिए बाबा कहते हैं बायोस्कोप जो है सिनेमा जो है वो सिन की माँ है, पाप की माँ है, पाप की जड़ है, पाप का बीज है। अगर हम इस बीज को बार बार पानी देते रहते हैं, अर्थात देखते रहते हैं, धूप देते रहते हैं, तो बीज शक्तिशाली बन के बट वृक्ष की तरह पैदा हो जाता है, और फिर हम उसकी छत्रछाया में रहने का प्रयास करते हैं सारा दिन, और ना केवल स्वयं फिर दूसरों को भी फॉरवर्ड करते रहेंगे वो वाले क्लिप। तो कितने लोगों का हमने अपना भी टाइम वेस्ट किया, फिर दूसरों को फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उनका भी बोझ हमारे माथे पर चढ़ जाता है। हाँ, आजकल ये भी देखा गया है कि सिनेमा जगत में देखेंगे तो बहुत सारी हलचल है अभी, वो अपने जीवन से बिल्कुल खोखले हो चुके हैं, यहां तक कि देखने सुनने में आता है कैसे अपना सुसाइड कर लेते हैं। तो उनकी आंतरिक जो स्थिति है, आंतरिक स्थिति बहुत दुर्दशा वाली हो गई है। अब वो संसार को नया रास्ता दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसे इस कदर डूब गए हैं पाप की दुनिया में कि उससे निकलने का रास्ता अब किसका दायित्व तो है। बाबा ने कहा तुम महात्माओं का बहुत बड़ा कर्तव्य है। अभी आने वाले संडे की मुरली में है कि संसार का वायुमंडल है वो बहुत कमजोर हो चुका है, शक्तिशाली आत्माएं ही कमजोर आत्माओं को बाहर निकाल सकती हैं, इसलिए तपस्या की तरफ भागो। तपस्या में कौन कौन से विघ्न आते हैं, तो उसमें एक मुख्य विघ्न आजकल ये भी है जो बायोस्कोप है। तो ब्राह्मणों को इस बायोस्कोप से बहुत परहेज रखने की जरूरत है। तो हम देखते हैं कि अपनी वृत्ति भी चंचल हो जाती है, दृष्टि भी चंचल हो जाती है, अपने मन बुद्धि का भी हम सत्यानाश कर लेते हैं, समय वेस्ट हो जाता है, संकल्पों की ऊर्जा चली जाती है। फिर जब हमको सफलता नहीं मिलती है तो क्या होता है, स्वयं के प्रति आत्मविश्वास तो वो भी कम होता है, साथ साथ में बाबा से भी विश्वास उठने लगता है, क्योंकि सोचते हैं कर तो रहे हैं लेकिन हम उन आज्ञाओं का जो उल्लंघन करते हैं उसकी तरफ कम ध्यान देते हैं कि जो हम उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे हम अमृत वेला करना है, अगर हमारा अमृत वेला शक्तिशाली नहीं हो रहा है तो सारे दिन में कोई ना कोई आज्ञा का उल्लंघन तो किया ही हमने। अगर हमारा नुमा शाम का भी योग शक्तिशाली नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं उल्लंघन तो किया है, क्योंकि कड़ी है, एक सर्कल बना हुआ है सवेरे से लेकर शाम तक। तो कदम कदम पर अटेंशन नहीं रखा तो वो फिर सीधा जब आत्मा शांत अवस्था में बैठती है तो सीधा सारे दृश्य मन के सामने घूमने लगते हैं। इसलिए बाबा कहते बायोस्कोप जो है इससे ब्राह्मणों को बिल्कुल परहेज रखनी है, बिल्कुल मना करना है, अपने आप को कुछ बांधना होगा, दृढ़ प्रतिज्ञा करनी होगी, नहीं तो हमारा जो इतना अमूल्य जीवन है, ब्राह्मण जीवन है, और वर्तमान समय तो विशेषकर हम जो मधुबन में बैठे हैं बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हम सबके कंधों पर। और ये कुछ दिखाने की बात नहीं, हमारे मन के अंदर ही अंदर हमको बहुत बड़े दायित्व निभाने की अभी जो समय आ चुका हुआ है, क्योंकि बाहर में आत्माएं भी बहुत अच्छा अच्छा पुरुषार्थ करती हैं, बहुत अच्छा अटेंशन रख के वो पुरुषार्थ में आगे बढ़ रही है, लेकिन उनकी अनेक प्रकार की जिम्मेवारियां हैं, उनको निभाना है। परिवार की जिम्मेवारियां हैं, सामाजिक जिम्मेवारियां हैं, आर्थिक जिम्मेवारियां हैं, कई तरह की जिम्मेवारियों का निर्वहन करने के लिए उनका टाइम उसमें बहुत चला जाता है। लेकिन हम आत्माओं को जो विशेष ऐसे मौके पर, जो बाबा कहते हैं संसार में कोटों में कोई और कोई में कोई और कोई में भी कोई, वो आत्माएं कौन है, हम मुट्ठी भर लोग हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम मधुबन में बैठे हैं बाबा के कमरे के लिए, संसार में ब्राह्मण जो है बैठे हुए वो आने के लिए कितने तरसते हैं, और हमको यहाँ चार धाम का जो इतना सुंदर वायुमंडल मिला है, मधुबन का जो कण कण है जो तपस्या से भरा हुआ है, तपस्या के वाइब्रेशन है, प्योरिटी के वाइब्रेशन है, तो हमको अपने ऊपर कितना अटेंशन रख के उनके प्रति मन साहब सेवा के लिए कितना सतर्क रहना पड़ेगा। तो हमको सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना से स्वयं को परिपूर्ण करना है, और वो तभी हो सकते हैं जब हम अटेंशन रखें, बार बार स्वयं की चेकिंग करनी है। बाबा ने कहा चेकिंग के लिए चार्ट के लिए संडे के मूल्य में कि अभी सामान्य चार्ट तो बहुत किया, चेक किया, लेकिन अभी आपके पास जो खजाने हैं, खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, स्नेह सहयोग का खजाना, अब ये सारे दिन में चेक करो कि हमने कहां तक बांटा, वो दूसरों को हम कहां तक सहयोग दे रहे हैं। तो मनसा सहयोग देने की अभी बहुत प्रबल जरूरत है, आवश्यकता है, तो उसको सामने रखते हुए हम अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें, सचेत रहें, ताकि हम ब्राह्मणों ना केवल संसार की आत्माओं के लिए बल्कि उन ब्राह्मण आत्माओं के लिए जो यहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं उनके प्रति भी हमारे कुछ दायित्व है, तो उनका भी हम पूरी तरह से निर्वहन कर सके। दूसरा, अभी देख रहे हैं सीजन कैसे बदलता जा रहा है दिन प्रतिदिन, अभी आने वाले टाइम में ये रूपरेखा भी बदल जाएगी, कल को जो ये लाइनें वाइने बंद हो जाएंगी, इससे भी अभी भी भाग्य बहुत है, जो ऑनलाइन देख पा रहे हैं ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। देखते देखते बाबा के मिलन की कैसे रूपरेखा बदलती जा रही है, तो आने वाले दिनों में क्या होगी ये तो हम आगे चलकर देखेंगे। वो दिन भी प्यारे थे, ये दिन भी प्यारे हैं, और आगे वाले आने वाले दिन कैसे होंगे वो भी हम देखते रहेंगे। तो ऑनलाइन जो देख रहे हैं इसका भी हमको पूरा पूरा फायदा लेना है। तो हमको ये नहीं सोचना कि बाबा अभी आने रहे हैं, बाबा तो वास्तव में गया ही नहीं है, बाबा तो यही है। उसके लिए पहले भी सुनाया था कि बाहर वाले भी कैसे यहां फील करते हैं, जो एक व्यक्ति था कहीं से आया था और मानता नहीं था, लेकिन बहुत एंटी था वो, लेकिन कैसे यहां एक रात रहा और उसको बाबा ने कैसे कैसे जादू दिखाया। पहले तो ब्रह्मा बाबा को भूत ही कहता था कि ये भूत है, इसकी फोटो क्यों लगाई है, फिर हमने समझाया थोड़ा उनको, तो फिर वो समझा, फिर अगले दिन उसको बाबा ने चमत्कार दिखाया, तो उसको बाबा ने खुद ही कहा मैं तो यही, जब तक ये यज्ञ संपन्न नहीं हुआ तब तक मैं जाऊंगा नहीं। तो वास्तव में अव्यक्त बाप दादा तो हमारे इर्द गिर्द ही हैं, अव्यक्त बाप दादा की शतर छाया के नीचे स्वयं को हमेशा सुरक्षित रखना है, जैसे बुद्धि क्लियर, लाइन क्लियर, जैसे उस दिन बताया ना कि हमें समय किस लिए मिला है, 10 बातें बताई थी, तो कि स्वयं को तपाने के लिए मिला है, स्वयं के कर्मेंद्रियों को शांत शुद्ध पवित्र बनाने के लिए मिला है। इन आंखों में हम बाबा ने कहा ना तुम जहान के नूर हो, तो इन आंखों की दृष्टि के लिए संसार तरस रहा है, इष्ट देव इष्ट देवियां कहां हैं वो ढूंढ रहे हैं, तो इन स्वयं को तपाने के लिए, कर्मेंद्रियों को शीतल करने के लिए समय मिला है। दूसरा, जो भी संकल्प करते हैं उसको अमर अविनाशी बनाने के लिए, अर्थात जो भी हम स्वमान में रहते हैं उसको पक्का करना है, छोड़ नहीं देना है, उन संकल्प को अमर बनाना है, अविनाशी बनाना है। अर्थात जैसे हम बाबा की याद में बैठते हैं तो संकल्प करते हैं कि हम बाप समान विश्व कल्याणकारी हैं, परम पवित्र आत्माएं हैं, सर्वशक्ति संपन्न हैं, तो इस संकल्पों को हमको अविनाशी बनाना है, अमर बनाना है। ये नहीं करना कि एक बार संकल्प कर लिया तो छोड़ दिया, नहीं, हमारे संकल्पों से निकलने वाली ऊर्जा सारे संसार को प्रभावित करती है, इसलिए वो संकल्प अमर भी बनाने हैं, अविनाशी भी बनाने हैं, और बाबा के साथ रूहान करनी है। सचमुच बाबा वो हमारा जीवन कितना श्रेष्ठ बना दिया, क्या थे और क्या बन गए हैं, है ना, किस लायक बना दे, भगवान के मददगार बन गए। कभी सपनों में नहीं सोचा था कि सचमुच भगवान के हम गोद में रहेंगे, भगवान हमको अपना राइट हैंड बना लेगा, वो अपने नैनों का नूर बना लेगा, सिर का ताज बना लेगा, वो अपने हमको इस कर्तव्य में योग्य, हमारे में इतनी सारी योग्यताएं भर देगा। हमारे अंदर जो सुमान जागृत किया कि हम सचमुच इतनी बड़ी संसार की जिम्मेवार आत्माएं हैं, संसार को कुछ राहत देने वाली आत्माएं हैं, तो हमारे अंदर कुछ सुमान बताया ना उस दिन, अहंकार को किसमें परिवर्तन कर दिया, स्वाभिमान में, स्वाभिमान में जागृत कर दिया, और काम को शुभ भावना शुभ कामना के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति में। तो बाबा ने कितने कितने संकल्पों की ये हमको एक सोचने की ताकत दी, और ये ज्ञान बुद्धि में ठहरने के लिए तो उसकी कृपा है ना, क्योंकि वास्तव में उसकी कृपा के बिना हमने देखा कुछ होता नहीं है। अगर हम सोचे कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये सोचना भी एक अहंकार हो जाता है। तो बाबा की कृपा से सब कुछ हो रहा है, तो कृपा राम भगवान का हमें दयालु कृपालु कृपालु है जी, भगवान के मददगार हो। हाँ, बाबा ने काली मुरली में कहा तुम भगवान के मददगार हो, अगर तुम नहीं हो तो स्वर्ग स्थापन नहीं हो सकता है। वास्तव में बात भी ठीक है, बाबा चाहे तो एक सेकंड में कर सकता है, लेकिन हम नहीं होते तो स्वर्ग में जाएगा कौन फिर उधर तो हमारी भी आवश्यकता है, जैसे इमारत में रोड़े की आवश्यकता है, तो रेत उस कण की आवश्यकता है, ईंट की आवश्यकता भी है, हर चीज की है। तो हम एक एक आत्मा में भगवान की मददगार हैं, कितनी बड़ी बात है ये कि उसने हमको योग्य समझ लिया। तो स्वयं को तपाना है, संकल्पों को अमर अविनाशी बनाना है, और रूहान करनी है, और चौथी बात ही रियलाइजेशन करना है, जो मैं रियल हूं, रियल का रियलाइजेशन, रियल मैं हूं कौन, जो सारे दिन में हमने अपने देह के मुखौटे पहन के रखे होते हैं, सारा दिन में अभी अभी ये है अभी अभी वो है, लेकिन हम एक तो कुछ है ही नहीं है, हम तो सेकंड सेकंड में बदल रहे हैं, वास्तविक तो हम कुछ और ही हैं, जो हमको इन आंखों से दृष्टिगोचर होता है वो थोड़ी नहीं हमें। बाबा ने कहा ना, कल एक मुरली पढ़ रहे थे, जो इन आंखों से दिखाई देता है उसको तुमको भूल जाना है, और जो नहीं दिखाई देता उसको याद करना है तो वो ही भूलना है तो वो हमको कितना बड़ा रियलाइज कराया कि हम तुम रियल में कौन, तो सच्चे सच्चे डायमंड हो, तो हमारी जो चमक है वो सारे संसार को चमकाने वाली है। और क्या करना है फिर, अपने को अवतरित आत्मा समझना है, इनकार्नेशन। तो हम अपने को अवतरित आत्मा समझेंगे तो भी हमारा इस दुनिया में लगाव धीरे धीरे कम होता जाएगा, और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। मैं अवतार हूं, अवतरित आत्मा है, अगर हम ये भी स्मृति रहे तो भी हमारा इस संसार से लगाव झुकाव टकराव नहीं रहेगा। और पांचवी छठी बात थी कि अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, उसके लिए हमको समय मिला है, स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत, और अंतिम समय मिला है। बाबा ने उसी मुरली में बताया था कि आने वाले टाइम में कुछ नहीं कर पाएंगे, हाँ, तो उस समय देखे, और अभी भी हमको ये चांस मिला है, अभी भी हम कुछ कर सकते हैं, ये हमको पता है कि अभी जो टाइम मिल रहा है हमको, सेवाएं तो क्या है, खेल है एक हिसाब से, और यहाँ इतना बड़ा सौभाग्य मिला है, तो हम जहां भी भले घरों में रहते हैं तो घरों में भी अपने आप को ऐसा ही समझना कि मैं मधुर निवासी हूं, समर्पित आत्मा हूं, समर्पित की परिभाषा बताई थी ना उस दिन, मैं अपन समाप्त बिल्कुल, तो घर में भी हम अपने आप को मधुबन निवासी समझ के चले, घर को ही मधुबन बनाए, स्वर्गाश्रम बनाए, ताकि हमारी वाइब्रेशन का प्रभाव दूसरी आत्माओं को भी कुछ ना कुछ अनुभूति कराता रहे। और फिर क्या बताया था, जो भी शुद्ध संकल्प जमा करने का टाइम है, शक्तिशाली संकल्प, तो सारे दिन में शुद्ध संकल्प कहां से मिलेंगे, एक तो मुरलियों से मिलेंगे, दूसरा मुरली के आधार पर अपने चिंतन को बढ़ाना है, क्योंकि मुरली के बात को याद भी तब हम कर सकते हैं जब शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करने की ताकत हमारी बुद्धि में होगी, और वो ताकत मुरली से भरेगी, तो बार बार हम मनन चिंतन करें तो शुद्ध संकल्पों का खजाना स्वतः ही हमारी बुद्धि में जमा होता रहे। और फिर आठवीं बात थी क्या करना है, फिर उनको बांटना है दूसरों को, ये नहीं अपने तक सीमित रखना है, दूसरों को ही बांटना है। और हाँ जी, वरदाता बनना है, महादानी बनने का टाइम है, वरदानी बनने का टाइम है, दानी बनने का टाइम है। और विघ्न विनाशक, ना केवल स्वयं बाबा ने कहा अभी सो कल्याण कस में चला गया, संडे की मुरली में आएगा, अभी सो कल्याण कस में नहीं है, अभी विश्व को देने का टाइम है। तो अनेक प्रकार जो विघ्नों से विश्व जूझ रहा है, इतनी इतनी बड़ी स्थितियां सामने देखने में आ रही हैं, और आने वाले टाइम में तो पता नहीं कौन सा काल आ जाएगा। अभी ये तो है जय कोरोना काल की, वो क्या बताया था उस दिन, हाथी घोड़ा पाल की जय कोरोना काल की, तो वो आगे वाले आने वाले समय में पता नहीं कौन कौन सी परिस्थितियां देखनी पड़ेंगी। तो उनमें स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए, विघ्नों का विनाश करने के लिए स्वयं को इन चीजों से भरपूर रखना है। और लास्ट में बताया था अपने मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखना है, और मन बुद्धि की लाइन क्लियर इन सब चीजों से होगा, ताकि हम समय पर टचिंग पावर कैचिंग पावर आ सके। और उसके लिए दो बातें बताई थी, एक नामी और एक अनामी, अपने संकल्पों की भी एक नामी करनी है और स्थूल में जो खर्चा है उसको भी यज्ञ के लिए बचाना है। तो ये सारी बातें थी। तो मुख्य टॉपिक जो था बाइस्कोप का प्रकोप, तो उस प्रकोप से स्वयं को मुक्त रखने के लिए इन सब चीजों की अटेंशन रखने की जरूरत है ना। मोबाइल हम यूज करें, अच्छी तरह यूज करें, ज्यादा से ज्यादा यूज करें, लेकिन उसमें वो चीजें यूज नहीं करें जिससे हमारा पतन हो, जिससे हमारी स्थिति डामाडोल हो जाए, जिससे हमारी स्थिति गिर जाए, हमारा टाइम वेस्ट हो जाए। हाँ जी, हाँ, हमने देखा विशेषकर एक आधा घंटा उस समय तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना जब हम ज्ञान योग में है। कई उनको तो आदत होती है मुरली सुनते सुनते भी कर रहे हैं, हाँ उसमें अगर आपको मुरली का पॉइंट आ वो नोट करना उसमें भले देख सकते हैं, लेकिन अगर हम और वो भी अगर चाहे तो कॉपी पेंसिल लिख दो, अच्छी बात है वो भी। लेकिन देखा कई बार इतनी आदत एडिक्शन हो गई है उसकी, उसके बिना रह नहीं सकते हैं। उसमें भी कोई दूसरा दूसरा सीन नजर आते हैं, अरे सारा दिन पड़ा हुआ है। कम से कम ये जो हमारा भगवान से मिलने का जो समय है, मुरली का योग का टाइम है, कम से कम इसको तो रखें। सारा दिन मोबाइल हमारे हाथ में है, उसमें भी अगर हम ये देखते रहे किसका मैसेज आ रहा है किसका मैसेज जा रहा है, तो भी क्या कहेंगे उसको, कितनी एडिक्शन होगी। तो भी बाइस्कोप माना हमारी प्रीत है, अभी उससे हमने छोड़ा नहीं उसको, वो तो छोड़ना चाहता है लेकिन हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ये चीजों का भी ध्यान रखना है। तो बाइस्कोप से हमको बच के रहना है। तो उसमें बताया क्या क्या हमारा वेस्ट होता है, हमारी सबसे बड़ी एनर्जी संकल्प शक्ति चली जाती है, समय टाइम वेस्ट हो जाता है, हमारी दृष्टि चंचल हो जाता है, अतीत की स्मृतियों को जो हमने योग बल से समाप्त किया था वो फिर से जागृत होने लगती हैं, स्वयं की समस्याओं के भंवर जाल में फंसे रहते हैं, आत्मविश्वास स्वयं का लड़खड़ाने लगता है, भगवान के ऊपर से भरोसा उठने लगता है, जीवन में उदासी रहेगी, डिप्रेशन रहेगा, ना केवल स्वयं का समय बर्बाद करेंगे दूसरों का भी समय बर्बाद करेंगे। तो ये सारी चीजों का अटेंशन रखना है। बाइस्कोप तो हमारा एक शत्रु है, एक है जी, हाँ वाइब्रेशन खराब करते हैं, भले हम किसी को सुना रहे लेकिन अंदर की हमारी मेंटेलिटी वैसी नहीं है तो उसका कोई असर नहीं है। तो हम दूसरों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अपने भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो कितना अटेंशन रखने की जरूरत है कदम कदम पर। तो ये बाइस्कोप प्रकोप उससे मुक्त रहना, ये थी मुरली 13 अक्टूबर की, उसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन। तो अभी आगे क्लासेस चलती रहेंगी और हम चिंतन करते रहेंगे। ओम शांति।
का क्या कहना, संगम की